ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा के इस बेहद घर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच गुजरात भरूच से पधारी हुई आदरणीय प्रभा बहन हम सबके बीच में है। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। आदरणीय प्रभा बहन 49 वर्षों से बेहद यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। विशेष भरूच आपका सेवा स्थान रहा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी विशेषता पालना की विशेषता रही है, बहुत सरल चित, बहुत विनम्र और प्रशासन में आप, व्यवस्था में आप बहुत कुशल हैं। भरूच में बाबा का बहुत बड़ा सेवा स्थान है जिसमें वैरायटी एक्टिविटीज को आप ध्यान देती हैं। मैं आपसे नम्र अनुरोध करती हूं कि आज बाप दादा से संगम युग पर हमें कौन कौन सी प्राप्तियां मिली है, क्या विशेष अधिकार मिले हैं, उन प्राप्तियों अधिकारों की गहराई में ले जा करके हमें आज मालामाल स्थिति का एक बहुत सुंदर नशे वाला अनुभव कराएं। आदरणीय प्रभा बहन
ओम शांति। प्रभु प्यारे शिव बाबा के अति अति मीठे स्नेही सभी होली हंस जो परमात्मा प्यार के अंदर चलते हुए परमात्मा पालना में पल रहे हैं, आज हम सभी शिव बाबा के बच्चे, हम कहें कि हम सभी बहुत 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 भाग्यशाली हैं। जिन बच्चों को स्वयं भगवान ने चुन करके अपना बना लिया है, ये स्मृति हम सबको बहुत खुशी देती है। साथ साथ नशा भी चढ़ता है। बाबा मुरली के अंदर हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मेरे बच्चे हो। तो जब हम सभी बाबा के इन शब्दों को सुनते हैं तो इन शब्दों को सुनते ही नशा चढ़ जाता है कि हम भगवान के चुने हुए बच्चे हैं, चुने हुए रतन हैं। भगवान ने हम सबको कहां 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 से ढूंढकर अपनी माला बनाई, अपने परिवार में लाया, अपने बच्चे बनाया। एक हिंदी में कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानवती ने कुनवा छोड़ा है कि कहां ईंट कहां पत्थर को इकट्ठा करके वो क्या कुम्हार जो है वो मटके आदि बनाता है, अपना संसार बनाता है, है? तो प्यारे बाबा ने भी हम सबको कहां कहां से चुना है और चुन करके एक बेहद का ईश्वरी परिवार बना दिया है? हमारा सबका ये कौन सा है? ईश्वरी परिवार। और आज हर एक बाबा का बच्चा ये अनुभव करता है कि हमारा बेहद का ईश्वरी परिवार है। आज जहां भी जाते हैं तो आप देखते हैं कहीं बाबा का झंडा दिखता है तो कहते हैं ये बाबा का घर है, कहीं बाबा का स्टिकर लगा हुआ होता है तो कहते हैं ये बाबा का बच्चा है, कोई गाड़ी पर भी लगा होगा ना तो कहेंगे ये अपने बाबा के बच्चे की गाड़ी है, चाहे किसी की भी होगी लेकिन स्टिकर को देख करके, झंडे को देख करके, क्योंकि ये हमारा सिंबल है, तो उसको देख करके हरेक को क्या लगता है कि ये हमारे है ना? और कोई अगर आपको रास्ते में ओम शांति कर देगा, भले कोई भी हो, बैच देख के भी ओम शांति कर देते हैं, क्योंकि आजकल तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ट्रेडमार्क ओम शांति है। भले वो नहीं भी चलते होंगे लेकिन फिर भी बैच देखकर कोई आपको अगर ओम शांति भी कर देता है तो क्या कहते हैं, ये अपने वाले है ना, माना अपने परिवार के, और उस परिवार के प्रति कितना क्या कहे प्यार आता है, अपनापन आता है। देखो लौकिक में देख करके इतना अपनापन नहीं आता है लेकिन हम बाबा के बच्चों को जब आपस में मिलते हैं करते हैं तो क्या होता है, अपनापन आता है। तो प्यारे बाबा ने हम सबको एक इतने बड़े बेहद के परिवार में ले आया, हदों से बाबा ने निकाल दिया और हमको बेहद में बिठा दिया है। तो बाबा ने हम सबको परिवार भी बेहद का दिया है तो प्राप्तियां भी बाबा ने हम सबको बेहद की दी। अगर उन प्राप्तियों को हम गिनती करते हैं तो हमारे पास गिनती करते जाएं लेकिन कभी भी वो प्राप्तियां खुटती नहीं है। तो बाबा ने हम सबको प्राप्तियां भी अनेक कराई हैं, अधिकार भी अनेक दिए। हम सब बाबा के बच्चे अधिकारी बच्चे है ना, तो अधिकार बाबा ने हम सबको कौन कौन से दिए, बाबा के हम बने हैं है? पहला अधिकार हम सबको मिला कि हम सभी परमात्मा के बच्चे बने। शिव बाबा ने हम सबको आते ही कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। रोज बाबा की मुरली सुबह में सुनते हैं तो पहला शब्द बाबा का हमारे लिए कौन सा होता है, मीठे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे नहीं, मीठे मीठे बच्चे, ये परमात्मा की भाषा है, परमात्मा का प्यार है, है? वो कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे। तो बाबा ने हमको अपना बनाकर, बच्चा बनाकर परमात्मा बच्चे का अधिकार दिया कि हम सभी परमात्मा के बच्चे बने और बच्चे बनने से ही हम पूजनीय आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। भगवान ने हम बच्चों को अपना किस लिए बनाया है? बच्चा बनाया लेकिन किस लिए बनाया? आकर के बाबा ने हम बच्चों को यही लक्ष्य दिया कि तुम मेरे बच्चे होवनहार देवताएं हो, पूज्य देवताएं हो। लक्ष्य दिया तुम सब बच्चे देवता बनने वाले हो। तो बाबा ने हम सबको अपना बना करके क्या दिया? अधिकार दिया, पूजनीय बनने का अधिकार दिया। पूजनीय आत्माएं और कोई नहीं है, हम ही पूजनीय आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं। ये बाबा ने हम सबको क्या दिया? अधिकार दिया है। दूसरा, बाबा ने हम बच्चों को अधिकार दिया कि बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार के ज्ञान के खजाने दिए, ज्ञान धन दिया है। और ज्ञान का धन कितना धन है? जो कभी भी खुटने वाला नहीं है। कहते ना, धन दिए धन ना खुटे। तो कौन सा धन? स्थूल धन तो खुट सकता है, लेकिन ज्ञान का खजाना कभी भी खुटने वाला नहीं है। और एक ही ज्ञान के खजाने के साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को कितने खजाने दिए, उन खजानों का बाबा ने हम सबको मालिक बनाया है। तो हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यशाली कि भगवान ने अपने सर्व खजानों का अधिकारी हमको बना दिया है। तो सर्व खजानों के अधिकारी। तीसरा, बाबा ने हम बच्चों को सर्व शक्तियों का अधिकार दिया है। सर्व शक्तियां बाबा ने हम बच्चों के अंदर भरी हैं, क्योंकि सर्व शक्तिवान बाप के बच्चे हम सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। तो बाबा ने हम सबके अंदर कितनी शक्तियां भरी हैं, एक शक्ति नहीं है, लेकिन सर्व शक्तिवान के बच्चे हम सर्व शक्तियों से संपन्न बन रहे। तो बाबा ने सर्व शक्तियों का भी अधिकार दिया और साथ साथ फिर बाबा ने हम बच्चों को स्वराज अधिकारी, कर्म इंद्रियों पर जीत पाने वाले हम अधिकारी बच्चे। आने का ना, स्वराज्य, स्व के राज्य से तुम आत्माएं विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो विश्व के राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? स्वराज्य अधिकारी बनाया। तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व पर राज्य कर सकते हैं। अब स्वराज्य अधिकार क्या है, वो भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि कैसे तुम बच्चे अपने जीवन के अंदर चलते हुए अपने ऊपर अधिकारी अर्थात स्व के ऊपर क्या होना चाहिए? अधिकार। मैं कौन सी आत्मा हूं और किसने मुझे अपना बनाया है? तो जब ये स्मृति है तो हम बाबा के बच्चे इस स्मृति से ही अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना लेते हैं। तो बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार के अधिकार देकर के बच्चे बनाया, शक्तियों से संपन्न बनाया, गुणों से संपन्न बनाया, सिर्फ बच्चे बनाकर सर्व संबंधों के अधिकारी भी बना दिया। सर्व संबंध उस एक बाप से है, सर्व प्राप्तियां हमें उस बाबा से है। तो जितनी हम प्राप्ति करते जाएंगे उतने हम बाबा के बच्चे अधिकारी बनते जाएंगे। तो अभी हमें संगम युग पर बाबा से क्या लेना है? अपना अधिकार लेना है। कहीं भी हमारा अधिकार रहना चाहे है? कि जो बाबा हम बच्चों को देने के लिए आया है और वो दे रहा है और हम बच्चे क्या लेने के लिए बैठे हैं, कहीं भी लेने में अगर थोड़ा सा भी अलबेलापन हुआ तो क्या होगा? हमारा ये संगम युग का जो समय है, वैल्यूबुल बाबा ने बताया कि संगम का समय कितना वैल्यूबुल है, एक एक दिन का बाबा ने महत्व बताया कि संगम का एक दिन एक जन्म के बराबर है, और संगम युग का एक सेकंड इतने घंटों के बराबर है। अगर हमारा एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो कितना समय व्यर्थ चला जाता है, एक घंटा भी व्यर्थ करते तो बाबा कहते एक जन्म का हमारा क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो संगम युग का जो वैल्यूबल समय है, बाबा ने हम सबको ये एक संगम युग विशेष खजाना दिया है, और इस संगम युग की वैल्यू को अगर हम बच्चे जानकर के पुरुषार्थ करते हैं, समय को जानकर के पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति अधिक कर सकते हैं। अगर समय की वैल्यू नहीं है तो हम प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनको समय की वैल्यू होगी वो कभी भी आलस और अलबेलेपन में नहीं आएंगे। आज कई बार कहते हैं ना कि भाई आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, व्यर्थ संकल्प चल गए। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं तो उसका कारण यही है कि समय की पहचान नहीं। अगर समय की पहचान है, समय की वैल्यू है तो व्यर्थ नहीं चलेगा। अगर ये समय चला गया संगम युग का समय हमारा चला गया फिर वापस आएगा? जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। कि भाई हम सोचे पिछला कल आ जाए और फिर हम पुरुषार्थ करें, नहीं, जो समय गया वो वापस नहीं आता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे समय की बहुत वैल्यू होनी चाहिए, और जिन बच्चों को प्राप्ति की वैल्यू है, प्राप्ति का पता है, वो कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। समय को व्यर्थ कौन गंवाता है? समय किसका व्यर्थ जाता है? जिसको प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, प्राप्ति का पता नहीं होता है, उनका समय व्यर्थ चला जाता है। जैसे देखो, अगर किसी की कमाई हो रही होती है तो कमाई करने वाला कभी भी आलस नहीं करेगा, कमाई करने वाला कभी भी अलबेला नहीं होगा। भाई आज मुझे इतनी कमाई है, कमाई की सीजन है, कहते हैं ना कमाई की सीजन है, तो जब कमाई की सीजन होती है उसमें किसी को अलबेलापन आता है, किसी को आलस आता है? भाई सीजन है किसकी? कमाई की। तो कमाई की सीजन में कभी भी आलस और अलबेलापन नहीं आता है, और कमाई की सीजन में जो आलस और अलबेलापन करेगा तो कमाई कब करेगा? कर सकेगा? कर नहीं सकते है? कहते ना समय चला गया फिर वो समय आता नहीं है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को भी यही कहा कि बच्चे ये संगम युग का जो समय है, इस समय की हमें क्या होनी चाहिए? बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए। जो समय चल रहा है, एक एक सेकंड हमारा कितना वैल्यूबुल है, और कमाई का समय है, और कमाई का समय ही अगर हम व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ में समय गंवा देंगे तो फिर वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि न श्वास पर भरोसा है, न समय पर भरोसा है, न स्वयं पर। आज देखो अच्छे हैं, चल रहे हैं, और कल कभी बीमार होते, कभी कुछ होता है, कोई परिस्थितियां आती हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो समय चला जाता है। सोचते हैं अरे पहले कर लिया होता तो अच्छा था। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे अपने समय की बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए। ये समय हमारा ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए और समय व्यर्थ उनका ही जाता है जिनको प्राप्ति दिखाई नहीं देती है। तो बाबा की जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को सदा सामने रखना है, और प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो कभी भी जीवन के अंदर अलबेलापन नहीं आता है। तो प्राप्तियों को सामने रखने से खुशी भी रहती है, प्राप्तियों को सामने रखने से अलबेलापन भी नहीं आता है और पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता आती है। बाबा हमेशा हम बच्चों को मुरली में कहते कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, है? और हम सभी कहते भाई हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है? मुरली के शब्द को हम लोग सुन लेते हैं, बाबा कहता तीव्र पुरुषार्थ करो, तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है? अभी सोचा कि भाई तीव्र पुरुषार्थ क्या है? योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते बाबा बोलता है तीव्र पुरुषार्थ करो। ऐसे कह तो देते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने उसकी डेफिनेशन हम बच्चों को बताई है कि तीव्र पुरुषार्थ है कि जो बात बाबा हम बच्चों को जिस समय जैसा अटेंशन दिलाता है उस समय उसी अनुसार हम बच्चे अगर पुरुषार्थ करते हैं तो उसको हम तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। जिसमें बाबा ने जो पुरुषार्थ कराया वो हमारी मम्मा ने उसमें नंबर ले लिया। मम्मा का मिसाल देते हैं ना कि मम्मा जो थी बाबा जैसे कहते थे और उसको प्रैक्टिकल में तुरंत उसी समय करती थी। ये मम्मा की एक विशेषता थी कि जैसे बाबा के मुख से जो बात निकलती थी बच्चे ऐसे, और मम्मा तुरंत उसी समय पर करती थी, तो उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। जो तीव्र पुरुषार्थ करके मम्मा सबसे नंबर वन चली गई। तो हम बच्चों को भी बाबा बोलता है तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो तीव्र पुरुषार्थ यही कि बाबा के मुख से जो बात निकलती है वो हमारी उसी ही समय पर अगर हम करते हैं तो हमें बहुत प्राप्ति होती है। अगर समय चला जाता है तो क्या होता है? बीच में गैप रह जाता है ना, तो उस समय मन भी बदल जाता है। कोई भी कार्य हम करते हैं सोचते हैं आज हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और कर लेते हैं फाइनल। क्लास में बाबा की मुरली सुनते हैं, मावा की मुरली सुन करके सोचते हैं कि आज से हम ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं तो मन में आता अच्छा आज नहीं कल से ऐसा करेंगे है? तो जब कल आया तो क्या होता है? जो सोचा था कल से करेंगे तो बीच में जो गैप पड़ा उसमें मन क्या हो जाता है? बदल जाता है ना? तो बाबा यही कहता है कि जब मन बदल जाता है, संकल्प किया, और संकल्प किया माना हम कर सकते हैं है? लेकिन हमने बीच में जो समय दे दिया ना, वो समय हमें क्या करता है? हमारे संकल्प को ढीला कर देता है। इसीलिए बा कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब है? तो अभी ही करना है। कल के ऊपर या बाद के ऊपर अगर हम छोड़ देते हैं तो वो पुरुषार्थ क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। समय देने से पुरुषार्थ के अंदर जो दृढ़ता थी वो दृढ़ता नहीं रहती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो है बाबा ने कहा है उसको हमें प्रैक्टिकल में करना, उसी समय करना, उसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा हम बच्चों को भी तीव्र पुरुषार्थ करा रहा है, और पुरुषार्थ करने की बाबा हम बच्चों को हरेक प्रकार की विधि भी बता रहा है। ऐसे नहीं है सिर्फ कह देता है कि बच्चे तुम तीव्र पुरुषार्थ करो है? लेकिन पुरुषार्थ क्या करो वो भी बाबा हम बच्चों को तुरंत ही, आज हम एक बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली के अंदर बाबा हम बच्चों को एक शब्द जो भी कहते हैं कि बच्चे ऐसे करना है, तो कैसे करना है उसका भी मार्गदर्शन बाबा हमें क्या करता है, उसी समय दे देता है कि ऐसे ऐसे तुम बच्चों को करना है। तो जब हमें मार्गदर्शन मिल जाता है तो करना फिर क्या होता है, मुश्किल होगा नहीं होगा। तो करना है तो उसी समय पर अगर हम करते हैं तो जीवन में हम सफल होते हैं। जैसे देखो ट्रेन चलती है तो दो पटरी पर चलती है, हैं? ट्रेन को जब चलना होता है तो क्या दो पटरी होती है, अगर दो पटरी नहीं है तो ट्रेन चलेगी, एक से उतर गई तो चलेगी नहीं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को जीवन की इस गाड़ी को चलाने के लिए दो ट्रैक दिए हैं, एक है श्रीमत और एक है दृढ़ता। श्रीमत और दृढ़ता दो बातें हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, और जितनी श्रीमत के ऊपर हम चलते हैं उतनी ही दृढ़ता आती है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दृढ़ता की कमी रहती है। अगर इन दोनों पटरियों के ऊपर अगर हम चलते रहते हैं तो जीवन की गाड़ी बहुत स्मूद चलती है, पुरुषार्थ बहुत स्मूद चलता है। अगर पुरुषार्थ के अंदर कोई भी प्रकार की कठिनाई आती है या कोई भी प्रकार की कमी होती है उसका कारण क्या होता है, हाँ? उसका कारण ये होता है कि जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है उस श्रीमत के अंदर कहाँ ना कहाँ हम क्या कर लेते हैं, गफलत कर लेते हैं। गफलत क्या करते हैं, जो श्रीमत आती है उसमें कहीं या तो मनमत मिक्स करते हैं या कहीं परमत मिक्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, श्रीमत की ताकत खत्म हो जाती है। और जब श्रीमत की ताकत और शक्ति खत्म हो जाती है तो जब श्रीमत की शक्ति खत्म हुई तो क्या हुआ, दृढ़ता भी कम हो जाएंगी, और जब दृढ़ता ही नहीं रहेगी तो हम जीवन के अंदर कार्य कर नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज मुरली के अंदर दो बातें पक्की कराते हैं, एक श्रीमत पक्की कराते हैं और एक दृढ़ता पक्का। रोज बाबा कहता बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत ये है, है? तो श्रीमत क्या है वो भी बाबा रोज मुरली में सुना देता है। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या, शब्द तो सब बोल लेते कि श्रीमत ये है, मनमत ये है, परमत ये है, पुरुषार्थ ये है, तीव्र पुरुषार्थ ये है, लेकिन बाबा हम बच्चों को श्रीमत जो दे रहा है, है? उस श्रीमत अनुसार चलना। अब श्रीमत पर भी कौन चल सकेगा, बाबा की श्रीमत पर भी जैसे बाबा श्रीमत पर चलाता है वैसे श्रीमत पर भी कौन चल सकेगा, जो पक्का निश्चय बुद्धि होगा। जितना निश्चय पक्का होगा उतना हम श्रीमत के ऊपर पक्का चलेंगे। अगर निश्चय में थोड़ी सी भी कमी होती है तो श्रीमत में मनमत आ जाती है। तो मनमत आने से फिर जो हम चलना चाहते हैं वो चल नहीं पाते हैं। और निश्चय बुद्धि जो है बस बाबा ने कहा माना कहा, इतना हमें बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। देखो दुनिया के अंदर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने कहा, गुरु की श्रीमत सिरमाते है, चाहे वो उल्टा ही सुनाते हैं, जानते हैं आप देखेंगे गुरुजी आजकल के गुरु क्या सुनाते, उल्टा ही सुनाते हैं ना, लेकिन गुरु के ऊपर क्या है, विश्वास है, शास्त्रों के ऊपर क्या है, विश्वास है, और वो विश्वास वो निश्चय उल्टी बात को भी वो ग्रहण करा देता है। और हमारा बाबा तो क्या है, है? सत्य है, और बाप हमें क्या दे रहा है, सत्य ज्ञान दे रहा है, है? सत्य प्राप्ति करा, हमें ये निश्चय है कि बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान दे रहा है वो सत्य, बाप सत्य है, तो सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य सतगुरु है, गुरुओं का गुरु भी है। और जो बाबा हम बच्चों को नॉलेज दे रहा है, जो पुरुषार्थ करा रहा है, वो कौन सा सत्य है। तो जब सत्य बाबा हमें सुना रहा है तो सत्य में फिर है? अगर हमें ऐसा वैसा संकल्प आता है कि बाबा की जो श्रीमत है, श्रीमत बाबा ने कहा बच्चे ऐसे करो, अगर हमें उसके अंदर ये संकल्प आया माना निश्चय में, कहां ना कहां थोड़ा क्या है डाउट है, कहां ना कहां थोड़ा 1% भी अगर है तभी मन के अंदर आता है क्या होगा कैसे होगा, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे वो चलेंगे नहीं। डाउट क्यों आया? क्योंकि कहां ना कहां थोड़ा बहुत निश्चय के अंदर कमी रह जाती है। तो बाबा के ऊपर हम किसके हैं, किसने हमें अपना बनाया, कौन है? हम कहते हैं ना कि परमात्मा ईश्वर है, बापों का बाप है, टीचर का टीचर है, सतगुरु का सतगुरु है, हम उसके बच्चे हैं। तो जब परमात्मा के हम बच्चे, परमात्मा के हम बच्चे, भगवान के बच्चे बने हैं, और भगवान कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिवान के हम संतान हैं। तो सर्वशक्तिवान जो कहेगा वो क्या कहेगा है? जो कहेगा वो सत्य कहेगा, जो श्रीमत मिलेगी वो श्रीमत श्रेष्ठ होगी ना। तो उस श्रीमत के अंदर अगर हमें थोड़ा सा भी कि बाबा है तो ऐसे कहते हैं पर है? तो बाबा के ऊपर क्या है? निश्चय। तो ये निश्चय अगर थोड़ा सा भी है, यही हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघन रूप बन जाता है। जो हमारा पुरुषार्थ ढीला करता है वो क्या कि थोड़ा सा भी बाबा ने तो कहा, लेकिन बाबा कौन है? अगर हमें ये निश्चय है बाबा ने कहा और हमें प्रैक्टिकल में करना है, तो बाबा ने कहा और हमें करना है, जब हम एक बात संकल्प कर लेते हैं तो बाबा उस करने के लिए भी हमें शक्ति देता है। देखो हम चाहे आत्माएं कमजोर हैं, थोड़ी ढीली हैं, पुरुषार्थ थोड़ा ढीला है, लेकिन अगर हम एक बात को बाबा की बात को मानकर के अगर हम उस समय दृढ़ संकल्प करके करते हैं तो करने की बाबा हमें मदद दे देता है, क्योंकि बाबा को पता है, तभी तो बाबा कहता है ना बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। बाबा के बच्चे तुम्हारी हिम्मत और मेरी मदद। तो बाबा की मदद हमें कब मिलेगी? बाबा की मदद कब मिलेगी? जब हमारा हिम्मत का एक कदम होगा। अगर हिम्मत का कदम नहीं है तो हमें बाबा की मदद मिलेगी? तो बाबा की मदद लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिम्मत का कदम रखना पड़ेगा। तो पहला कदम हमें खुद रखना है, फिर हमें बाबा की मदद मिल जाएगी। जैसे देखो छोटा बच्चा होता है, जब चलना सीखता है तो पहले वो क्या करता है? अपनी उंगली पकड़ाता है, और उंगली पकड़ ली तो उसको क्या रहता है कि मेरी उंगली पकड़ी है, तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है पांव रखने की, है ना। तो ऐसे ही हमने भी अपनी उंगली बाबा को पकड़ाई, एक कदम हमने रखा, तो बाबा मदद करने के लिए हमें क्या है? बंधा हुआ है। ये भगवान का हमारे से वायदा है, कि मैं तुम बच्चों के लिए हूँ, तुम बच्चों का मददगार हूँ, लेकिन हम हिम्मत करें। हम मैं सोचूं बाबा मुझे मदद कर दे है? तो बाबा ऐसे थोड़ी मदद करेंगे। कई बच्चे बोलते हैं बाबा मदद करे, बाबा आशीर्वाद करे, बाबा कृपा करे है? हम बाबा के बच्चों के मुख से ये शब्द अच्छे लगते हैं, बाबा मुझे मदद करे, बाबा मुझे कृपा करे, बाबा मुझे आशीर्वाद करे है? अगर ये आता है कि बाबा मुझे मदद करे, बाबा मुझे कृपा करे, आशीर्वाद करे, तो सोचो हम बाबा के बच्चे हैं है? अगर ये मन में है कि बाबा मुझे मदद करे, कृपा करे, आशीर्वाद करे, तो अपने दिल से सोचो हम बाबा के बच्चे हैं। बच्चे माना अधिकारी, बच्चे माना हम अधिकारी हैं। तो हम अधिकारी किसके? बाबा के वर्षे के अधिकारी। तो बाबा का जो वर्षा है, जो बाबा की प्रॉपर्टी है, जो बाबा की शक्तियां हैं, जो बाबा का वरदान है, वो हमारा है। अगर हम बाबा के बच्चे बनकर के चल रहे हैं तो बाबा का कृपा, आशीर्वाद, दुआएं सब हमारे साथ है। दुआएं आशीर्वाद कृपा कब रहेगी? जब हम बाबा की एक एक श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक होगी। आज दुआएं किसको मिलती है? हा? जो श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी बनते हैं, जो वफादार बनते हैं, जो ईमानदार बनते हैं, जो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, उनको दुआएं मिलती है ना। तो बाबा की दुआएं भी हम कैसे लेंगे? जो बाबा की हम बच्चों के लिए श्रीमत है, उस श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं तो बाबा की दुआएं भी हमको मिलती रहेंगी। बाबा की दुआएं तो हमारा अधिकार है, तो हम अधिकारी बच्चे। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के अधिकार दे दिए, अधिकारी बनाए। बच्चा क्यों बनाया बाबा ने? है? बाबा ने कभी ये नहीं कहा तुम मेरे चेले हो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा, कोई कहा लेकिन क्या कहा बाबा ने? तुम मेरे बच्चे हो, है? मैं तुम्हारा बाप हूं। तो बच्चा बनाया क्यों? सब अधिकार देने के लिए। बच्चे को सर्व अधिकार दिए जाते हैं, बच्चे को अधिकार मांगने नहीं पड़ते है? बच्चा बना माना अधिकारी बन गया। तो हम बाबा के बच्चे बने माना बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। अब बाबा का जो भी वर्षा है, जो शक्तियां हैं, जो भी बाबा की खजाने हैं, प्राप्तियां, वो सब हमारा है। उसको कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं ना, रावण भी नहीं छीन सकता है जो बाबा ने हम सबको दिया है। तो इस समय बाबा हम बच्चों को जो दे रहा है, हम उस अपने अधिकार को संभाल करके रखेंगे तो अधिकार हमारा है। इस अधिकार की खुशी में और जितना नशे में रहते हैं उतना अधिकार अपने पास रहता है। तो बाबा की जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को देखते हुए चलना और देखते हुए चलते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। जब तक प्राप्ति सामने नहीं है तब तक हर बात मुश्किल लगती है, और प्राप्ति सामने है तो मुश्किल बातें भी क्या हो जाती है? सहज हो जाती है। और अगर प्राप्ति सामने नहीं है तो क्या लगेगा? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आज देखो दुनिया वाले क्या कहते हैं, आपका ज्ञान तो सहज है लेकिन आपकी धारणाएं बहुत मुश्किल हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? मुश्किल है कहते हैं। हम सभी क्या कहते हैं? कुछ मुश्किल नहीं। क्यों? हमारे सामने प्राप्ति है, हम प्राप्ति को देख करके चल रहे। तो जैसे प्राप्ति को देख करके चल रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे सदैव बाबा से दिन प्रतिदिन जो बाबा हमको समय प्रति समय देता जा रहा है उन प्राप्तियों को हम देख करके चलते रहें तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और बाबा से जो हमें अभी बाबा देने के लिए आया है, बांटने के लिए आया है, अधिकार दे रहा है, उस अधिकार को हम लेते रहेंगे। और अधिकार को न लेना यही अलबेलापन है, यही समय की वैल्यू नहीं है। तभी हम बाबा से क्या करते हैं, अपने अधिकार को नहीं ले सकते हैं। तो बाबा की जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को देखते हुए हमें चलते रहना है, यही हमारा पुरुषार्थ सहज करेंगी और पुरुषार्थ की खुशी भी होंगी और खुशी से ही सहज पुरुषार्थ। अगर खुशी नहीं है तो क्या होता है? मुश्किल लगता है। और खुशी कैसे होती है? खुशी हमें बाबा की प्राप्तियों से होती है। जितना हम बाबा से प्राप्त करते उतना खुशी होती है, अगर प्राप्त नहीं करते तो खुशी नहीं होती। तो खुशी सदैव रहे, खुशी जीवन से कभी न जाए। ये खुशी हमारा एक बहुत बड़ा क्या है? अधिकार और खजाना है। बाबा ने हमें ये अधिकार दिया, सदैव खुश रहो। हाँ, खुश रहो, आवाद रहो, हाँ, न विसरो न याद रहो। हाँ, कहता है ना बाबा मुरली में, माना विसरो भी नहीं हाँ, और किसी को याद भी नहीं करो। बाबा को सदा याद करते हुए चलते रहो और जितना हम बाबा को याद करते हुए चलते रहेंगे उतना खुशी में झूमते रहेंगे। खुशी हमारा अधिकार है, खुशी हमारा खजाना है। जिस खजाने को लेते हुए हम चलेंगे तो पुरुषार्थ भी हमारा सहज हो जाएगा। तो बाबा हम बच्चों से हमारे पुरुषार्थ को इतना सहज करके चला रहा है, सहज ज्ञान दिया, सहज राजयोग सुनाया, सहज पुरुषार्थ है। भाई लोग तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कहते हैं हमारे बाबा ने हमें क्या कर दिया, सहज कर दिया है। आजकल सहज को सब मानते हैं, पढ़ाई में भी कहते हैं ना, खेल खेल में पढ़ाई की कराई जाती है। अगर बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे तो बोझ लगता है, अभी खेल खेल में ही पढ़ाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कराता है, खेल खेल में पढ़ा रहा है, खेल में पढ़ा रहा है ना बाबा। देखो कितनी ऊंची बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, और हमको क्या लगता है, खेल लगता है। पुरुषार्थ बाबा हमारा कितना ऊंचा करा रहा है, क्या पुरुषार्थ करा है, देवता बनने का पुरुषार्थ करा रहा है। और कैसे करा रहा है, सहज। अभी देखो हम सहज बैठे हैं, क्या बनने वाले हैं, कोई कहेगा ये देवता बनने वाले, लेकिन हमको कितनी खुशी है कि भाई हम सभी देवता बनने वाले, और देवता बनाने के लिए भगवान आया है, श्रेष्ठ दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आया है। हमें बाबा ऐसा पुरुषार्थ करा रहा है, इतनी बाबा हम बच्चों को प्राप्तियां दे रहा है, तो देख करके हम बच्चे सहज रीति से कर रहे हैं। तो ज्ञान भी सहज, पुरुषार्थ भी सहज, प्राप्ति भी बाबा हम बच्चों को सहज करा रहा है। क्या मेहनत बाबा कराता है, अगर देखा जाए तो बाबा हम बच्चों से क्या मेहनत कराता है। भक्ति के अंदर देखो भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, आजकल तो भक्ति में बहुत मेहनत बढ़ गई है, देखा है ना, कितनी यात्रा करने के लिए रात रात लोग जाते हैं, पैदल चलते हैं, कितना जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और बाबा हम बच्चों से क्या मेहनत कराता है, अगर देखा जाए तो बाबा हम बच्चों से क्या मेहनत कराता है, कराता है कुछ मेहनत सहज रीति से, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, बच्चे सिर्फ बाबा ने ये पढ़ाई दी है इसको पढ़ो, है कितना सहज, इतना सहज बाबा ने हमको करके दिया है, जो हम सहज ही करते चले। लेकिन बस एक ही बात की, बाबा की जो बात बाबा जैसे हम बच्चों को कहता है उस अनुसार अगर हम बच्चे करते हैं तो पुरुषार्थ सहज है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर हम अपने मन की बात को लाते हैं तो पुरुषार्थ मुश्किल हो जाता है। तो सहज करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को जो सहज मार्ग दिखाया है, सहज प्राप्ति कराई है, उस सहज मार्ग को सहज ही करें, उसको कठिन नहीं करें। अगर कठिन करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर कहेंगे अभी कैसे करें, क्या करें, फिर मुश्किल लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं करो, बाबा सहज वर्षा हम बच्चों को देने के लिए आया है और सहज दे रहा है, और साथ में हमारा बैकबोन कौन है, बाबा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, है बाबा ने कहा ना, बच्चे मुझे याद करो, कोई भी परिस्थिति आती है, पेपर आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, मुझे याद करो, मैं आपके साथ हूँ। तो बाबा हमारा साथी है, है? अगर यही इतनी भी स्मृति अगर हमको आ जाती है कि बाबा मेरा साथी है और बाबा कौन है, तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। देखो आज दुनिया के अंदर भी लोग जो होते हैं, अगर उनका कोई बैकबोन होता है तो उस नशे से चलते हैं। आज कोई गलत काम करने वाला भी होता है ना, तो उसका कोई मिनिस्टर या कोई बैकबोन अच्छा होता है तो किस नशे से चलते हैं, फलाना मेरे साथ है। और हमारा है, हमारा साथी कौन है, बाबा है, तो हम सबका बैकबोन कौन है, बाबा है। तो हमें कितना नशे से चलना चाहिए, वो नशा रहता है, कहते हैं ना भाई देवताओं के पांव धरती पर नहीं रहते, तो अगर हम देवता बनने वाले हैं और उस नशे में चलते हैं तो हमारे पांव तो धरनी पर ही नहीं रहने चाहिए ना, क्या रहने चाहिए, उस खुशी में। और खुशी में जितना झूमेंगे उतना चलेंगे उतना पुरुषार्थ सहज होगा। अगर खुशी नहीं है तो पुरुषार्थ क्या लगता है, मुश्किल। बाबा ने हम बच्चों को दो पंख दिए, उमंग और उत्साह। जितना उमंग उत्साह के पंख मिले हैं उसमें उड़ते रहेंगे तो पुरुषार्थ सहजे। कभी भी उमंग कम ना हो, उत्साह कम ना हो। बाबा रोज हम बच्चों को मुरली में क्या देता है, उमंग और उत्साह भरता है, है? और उस उमंग उत्साह से अगर हम चलते रहते हैं तो पुरुषार्थ हमें कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो पुरुषार्थ को सहज करने के लिए कभी भी हमारा उमंग कम ना हो, कभी भी उत्साह कम ना हो और कभी भी खुशी कम ना हो। अगर हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो कभी भी उमंग भी कम नहीं होगा, उत्साह भी कम नहीं होगा और खुशी भी कम नहीं होगी। तो उमंग उत्साह खुशी को सदैव कायम रखने के लिए अपने जो बाबा से प्राप्तियां मिल रही हैं उन प्राप्तियों को सदैव सामने रखते चलना है। सिर्फ क्या करते हम, सभी प्राप्ति नहीं देखते हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, है, सुन रहे हैं, योग कर लिया, क्लास कर लिया, है, आज एक नियम तो हम सब बना लेते हैं, सब नेमी नाथ तो बन गए हैं, है, लेकिन बाबा ने आज मुरली के अंदर हमें क्या सुनाया, क्या खजाना दिया। कहते हैं ना ये ज्ञान रतन है, है, और बाबा भी कहता है बच्चे मैं तुम बच्चों को रतन देने के लिए आया, है, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा हूँ। ये रतन, एक एक रतन की कितनी वैल्यू है, लाखों से भी ज्यादा है, तो एक एक रतन, बाबा का एक रतन अगर हमें स्मृति में है कि बाबा ने आज मुझे कौन सा रतन दिया, कितने रत्नों से भरपूर किया, अगर हम उसकी भी गिनती करें ना, इतने रत्न बाबा ने मुझे दिए, तो क्या रहेगी, खुशी रहेगी। और वही खुशी हमें पुरुषार्थ कराएंगी। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार से भरपूर किया है, उस भरपूरता को सदैव स्मृति में रख कर के अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत बहुत सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ में कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अपने खजानों को, अपनी प्राप्तियों को सदैव देखते हुए चलते रहना है तो हमारा पुरुषार्थ सहज होगा। ओम शांति।